क्या वो जो के मैता है, मुर्दार है? हाँ, फिर क्या हुआ? यानी मुर्दार था, फिर क्या हुआ? तो आहिये ना, फिर हमने उसको जिंदगी दे, हमने उसको जिंदगी दे। यहाँ पर कोई ह्यूमन बर्थ प्रोसेस की बात नहीं हो रही है कि पहले इंसान जो था वो एक नुतफा था, फिर नुतफे के अंदर अल्लाह ताला ने जिंदगी डाली तो फिर वो एक जिंदा फीटस बन गया, फिर उसके बाद जो है वो बच्चा बना, फिर उसके बाद उसकी पैदाइश हुई। यहाँ पर ये ह्यूमन डिलीवरी प्रोसेस की बात नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पे कौन सी वाले ख्याल की बात हो रही है कि पहले वो मर्दा था, एक डेड सेल था, और उससे उसको हमने जिंदा कर दिया? नहीं, बल्कि वो एक जिंदा इंसान था जो कि जमीन के ऊपर चलता फिरता था, अपने खानदान में, अपने घर वालों के दरमियान रहता था, खाता पीता था, जॉब पे जाता था, और अपने जिंदगी के दूसरे फंक्शंस अदा करता था। उसको हमने जिंदा कर दिया, तो हमने जिंदा कर दिया। उससे पहले वो मुर्दा था, चलता फिरता था लेकिन मुर्दा था, खाता पीता था लेकिन मुर्दा था, बातचीत करता था लेकिन मुर्दा था, बाकी मशगूलियात करता था लेकिन मुर्दा था। तो परवरदिगार कायनात, हमारा खालिक, हमारा मालिक, इस कुरान का मुतकल्लिम, क्योंकि ये उसका कलाम है, वो ये फरमा रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद सारे लिविंग फंक्शंस अकॉर्डिंग टू साइंस, सारे लिविंग फंक्शंस करने के बावजूद वो डेड, वो मुर्दा था, फिर हमने उसको जिंदगी दे दी। फअहयैना, हमने उसको जिंदगी दी, वजअलना लहू नूरा, और हमने उसके लिए एक नूर बना दिया, नूर दे दिया उसको, रोशनी दे दी उसको, नूरन यमशी बिही फिन्नास, वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। लफ्जन अल्लाह ताला ने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि वो इंसानों के दरमियान चलता फिरता है, लेकिन सिर्फ चलता फिरता नहीं, या सिर्फ चलने फिरने के वक्त जो है वो हमने उसको नूर दे दिया, जैसे हम किसी को टॉर्च दे देते हैं रात के वक्त, जब चलना फिरना होता है तो टॉर्च दे देते हैं, फिर उसके बाद जब वो अपने बेडरूम में चला जाता है तो फिर वो टॉर्च बंद कर देता है, अब उसके पास टॉर्च नहीं होती। यहाँ पर ये टॉर्च मुराद नहीं है कि बस चलने फिरने में उसको जरूरत थी, बाद में उसको बंद कर दिया, बाद में उसको किसी को वापस कर दिया, नहीं, बल्कि यमशी भी नास, ये जिंदगी गुजारता है इस नूर के साथ, ये नूर उसके साथ अब परमानेंट हो जाता है, ये उससे जुदा नहीं होता, ये मुस्तकिल उसके साथ रहता है। तो वो जानना लहू नूरन, हमने उसके लिए एक नूर बना दिया, अब वो उसके साथ ही जिंदगी गुजारता है, उस नूर के साथ, उस रोशनी के साथ। कमम मसलुहु, क्या वो बराबर हो सकता है, मम मसलुहु फिल ज़ुलुमाती, कि क्या उसकी मिसाल उसके जैसे हो सकती है जो कि ज़ुलुमात में हो, अंधेरों में हो, लैसा बिखारिज मिन्हा, कि वो उनमें से निकल ही नहीं पाता हो, उन अंधेरों में से वो निकल ही नहीं पा रहा। ये भी पहले अंधेरे में था, ये भी पहले मैता था। जैसे हम लोग ना अक्सर बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है ना वो कोई गुनाहगार किसी का हमें पता चलता है, उसमें बड़े बड़े गुनाह किए होते हैं या गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा है, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये भी ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए तो इज अ लॉस्ट केस, इज अ लॉस्ट केस, देयर इज नो होप फॉर हर। अब ये बस या नहीं, हमें उसके फ्यूचर का नहीं पता, बल्कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, इंसान अपने माजी को भी भूल जाता है। हमें से तकरीबन सारे के सारे एक बैकग्राउंड से आए हैं कि जिसके अंदर हम भी ऐसे ही थे, गुनाहों की जिंदगी में पड़े हुए थे, हमें ना शरीयत का पता, ना सुन्नत का पता, ना हलाल का पता, ना हराम का पता, और हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जैसे कि कोई शख्स आज ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, हम भी ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर जब हम बदल गए तो हमें किसने बदला? अल्लाह को क्रेडिट देते हैं हम, अच्छी चीजों का क्रेडिट उसको दिया जाता है जिससे इंसान मोहब्बत करता है, बुरी चीज का क्रेडिट उसको नहीं देता या ब्लेम उसको नहीं देता जिससे इंसान मोहब्बत करता है। लेकिन जिससे मोहब्बत होती है ना, तो अब अगर अगर अमल अपना भी किया हो ना, खुद भी मेहनत करी हो, खुद भी कुर्बानियां दी हो,
खुद भी जो है वो चीजों को समझा हो, फिर उसके बाद छोड़ा हो, फिर ये सब कुछ किया हो, लेकिन महबूब को क्रेडिट दे रहा है कि नहीं उसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, ये अच्छा जो मेरे साथ हुआ वो उसकी वजह से हुआ, और जो बुरा होता है वो उसका ब्लेम किसको देता है, कि जैसे उसको नफरत होती है, कि जिसको वो बुरा समझता है, जिससे उसको बोझ होता है, कहता है देखिए हर चीज उसकी वजह से हो रही है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, तो ये जो आज गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजार रही है या गुजार रहा है, तो वही अल्लाह क्या इसको तौफीक नहीं दे सकता? हम कौन से इसके ऊपर पहरेदार बैठे हुए हैं कि अपने लिए तो आज ही हमें मिल गई, हम नेक बन गए, और वो अल्लाह जो है वो इसको तौफीक नहीं देगा? क्यों नहीं देगा भाई, क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है, देगा कि नहीं देगा ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि अल्लाह देगा, अगर अल्लाह ताला की हिकमत के अंदर इसको देना मकसूद होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो शख्स अब अहयैनाहु हो गया, अब जिंदगी इसको मिल गई, पहले ये भी मुर्दार ही था ना, ये भी रूहानी तौर पर मैता ही था, लेकिन जब ये जिंदा हो गया तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब देयर इज अ डिफरेंस नाउ, अब ये दोनों सेम नहीं है, तो ये उसके बराबर नहीं हो सकता, वो इसके बराबर नहीं हो सकता। तो फरमाते हैं कमम मसलहु ज़ुलुमात, क्या ये उस शख्स के जैसा हो सकता है जो कि अभी तक अंधेरों के अंदर है, लैस बिखारिज मिन्हा, वो उसमें से निकल नहीं पाता। तो अल्लाह ताला ने निकलने की केमिस्ट्री जो है वो इसी आयत के शुरू में बता दी कि जो निकलता है उसको हम निकालते हैं, तो अहयैनाहु, और ये जो है ना ये उसमें से निकल नहीं पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। अब इसके ऊपर फौरन से एक जहन में सवाल आता है, चाहे वो हमारे नफ्स की तरफ से आए, चाहे शैतान की तरफ से आए, फौरन आता है कि फिर अल्लाह ने करना था तो फिर हमें क्या करना? जब अल्लाह ने हमें निकाल दिया या अल्लाह ने फलाने को निकाल दिया, इसको नहीं निकाल रहा क्योंकि अल्लाह ही निकालने वाला है, अल्लाह ही फंसाने वाला है, तो फिर अल्लाह ताला सारा मसला अल्लाह का है, लेकिन है तो ये इसका बस मतलब निकलता है ना कि सारा मसला तो अल्लाह का है, मसला इंसान का तो नहीं है कोई, और अल्लाह ताला ये कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं बयान कर रहे कि हमने अल्लाह को ऐसा समझा, इस वजह से हम अल्लाह को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट अल्लाह डज। अल्लाह खुद फरमा रहे, अल्लाह का कलाम है, और वो कलाम अल्लाह की तमाम मखलूक के पास पहुंचाया अल्लाह ताला ने, भागे भी नहीं रखा कि मैं ये जो सीक्रेट है ना अपने बारे में मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये लोग कहीं मेरे बारे में बदगुमान ना हो जाए, बल्कि इसको डंके की चोट पर इसका ऐलान फरमाते हैं अल्लाह ताला, तो अहयैनाहु, हमने उसको जिंदगी, और ये नहीं निकल पा रहा इसके अंदर से। तो अब शैतान का जो ये वार होता है इंसान के ऊपर, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब तो कुरान मजीद से खुशीदा दिया जाएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते। भाई ये भी तो कुरान ही है ना, अब इसको तुम यकीन कर लो कि हाँ ये अल्लाह ने कहा कि हम जिंदा देते हैं, हम जिंदगी देते हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जिंदगी से नहीं निकल सकता, ये अंधेरों में से नहीं निकल सकता, तो ये भी तो कुरान ही है ना। उसी तरीके से कुरान ही वो भी है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते बल्कि अपनी जानों के ऊपर खुद जुल्म करते हैं, तो वो भी अल्लाह ही का कलाम है, वो भी अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। तो अब जब इन दोनों बातों की तस्दीक की जाती है तो पता क्या चलता है कि अल्लाह ताला किसी को जो जिंदगी देते हैं तो उसने कोई ऐसा काम अपने इख्तियार से, अपनी चॉइस से किया होता है दैट मेड हिम और हर डिजर्विंग ऑफ इट, और जिसको अल्लाह ताला नहीं निकालते हैं उसने अपने इख्तियार से कोई ऐसा काम किया होता है या जो करना चाहिए तब वो नहीं कर रहा है कि विच वुड हैव मेड हिम और हर डिजर्विंग ऑफ द हिदायत, डिजर्विंग ऑफ द लाइफ, रियलिटी ऑफ लाइफ। वो जिद कर रहा है, लगा हुआ है, डटा हुआ है बात ना मानने के ऊपर, बात ना सुनने के ऊपर, एक कान से सुना तो दूसरे कान से उड़ा दिया, या इतना भी नहीं किया बल्कि एक कान में भी घुसने नहीं दिया। तो ये उसका कसूर है ना, अल्लाह ताला ने तो उसके ऊपर जुल्म नहीं किया, अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार देकर के इस जिंदगी के अंदर
दुनिया के अंदर भेजा और वो नहीं सुनना चाहता, वो नहीं सुन रहा, वो हटा हुआ है, डटा हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो उसका मसला है, अल्लाह ताला का मसला नहीं है, अल्लाह का कसूर नहीं। और जहां तक ये बात आती है कि अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं, अल्लाह ताला ने प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फेथ है, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फेथ का जहां पे लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब व्हेन इट इज एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड, तो उसका क्या मसला है? तो उसका मसला एक तो हम सादगी से ये जवाब देंगे कि भाई प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फेथ के अंदर सिर्फ हिदायत इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, ओनली हिदायत, ओनली रूहानी हयात is not predetermined. Everything is predetermined. Everything is predetermined. Meaning, the food that we eat is predetermined. The water that we drink is predetermined. The air that we breathe is predetermined. The clothes that we wear are predetermined. Right? Anything that we do is predetermined. Then why do you do anything? क्यों कमाते हो? क्यों अपने हाथ से निवाला बना करके मुंह में डालते हो? It's predetermined, वो खुद से आएगा मुंह के अंदर। पानी क्यों उठा करके पीते हो? It's predetermined, वो खुद से उड़ करके तुम्हारे पेट के अंदर चला जाएगा। खाना, कपड़े क्यों पहनते हो? वो खुद से तुम्हारे ऊपर आकर के पहन जाए, तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, एडोन हो जाओगे तुम अपने कपड़ों से। Enjoyment that you always seek for is also predetermined, right? It's not just hidayat that's predetermined. Enjoyment जिसके लिए भागे चले जा रहे होते हैं, कभी कोई मैच देखने जा रहे होते हैं, कभी कोई कॉन्सर्ट सुनने के लिए जा रहे हैं, कभी कोई और तमाशे करने के लिए जा रहे होते हैं, ये भी तो सारा predetermined है ना, जिसके लिए तुम भागते होते हो, तुम मेहनत करते हो। Education जिसके लिए खुद भी भागे चले जा रहे होते हो, अपने बच्चों को भी जो है वो ऑपरेशन करवाने के लिए, कल मुफ्ती साहब जो इस बारी रमन सरकार का आर्टिकल पढ़ रहे थे, मकारा जो उन्होंने 1964 में लिखा था कि जब फाइनल नेल इन द कॉफिन ठोकने के लिए, हमारे कॉफिन में फाइनल नेल ठोकने के लिए ब्रिटिश ने कहा कि भाई ये इनके अंदर अभी भी ईमान की चिंगारी जो है ना वो बाकी है, कहीं फाक ना उठे, और कहीं जो है ना ये हमारी इस्तेदार की जो इमारत है वो चिंगारी भड़क करके हमारी इस इंतजार की इमारत को खाकस्ता ना कर दे, जला के राख ना कर दे। तो ब्रिटिश ने फिर फाइनल नेल इन द कॉफिन ठोकी और वो ये एजुकेशन सिस्टम था, वो ये एजुकेशन सिस्टम था। इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए से ये रही सही जो ताकत ईमान की रह गई थी ना, अमाल तो पहले खत्म हो चुके थे, अमाल तो पहले छोड़ दिए थे मुसलमानों ने, और बुरे अमाल और गुनाहों के अमाल शुरू कर दिए थे, लेकिन एक ईमान की चिंगारी थी, इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए से वो ईमान की चिंगारी भी खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। अब ईमान नहीं बाकी बचा, अब तो दाढ़ियां बाकी बच गई, अब तो टोपियां बाकी बच गई, अब तो जुब्बे बाकी बच गए, अब तो इमामे बाकी बच गए, अब तो इज्तिमात बाकी बच गए। ईमान तो इल्ला माशाल्लाह कहीं पे मिलता है, ईमान की रट बहुत है, ईमान की मेहनतें बहुत हैं, ईमान की तालीम बहुत है, लेकिन ईमान है कि नहीं है वो तो जरा बैठेगा तो पता चलेगा कि ईमान किधर है कि नहीं है। तो इस एजुकेशन के लिए जो कि एक्चुअली फाइनल नेल इन द कॉफिन था इस उम्मत के मुर्दा मुर्दे जिस्म के अंदर, तो उसके लिए भागे चले जाते हैं कि नहीं भागे चले जाते हैं, और अपने बच्चों को जो है वो भगाते हैं उसके लिए कि नहीं भगाते हैं। भाई इट्स ऑल प्रीडिटरमिन्ड, क्यों स्कूल जाते हो, क्यों कॉलेज भेजते हो अपने बच्चे को, क्यों जो है वो इतना लाखों करोड़ों खर्च करके जो है वो अमरीका तक भेज देते हो अपनी औलाद को पढ़ने के लिए और ये करने के लिए। इट्स ऑल प्री डिटरमिन्ड, भाई हिदायत तो खाली नहीं है ना प्री डिटरमिन्ड, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सिर्फ पास्ट तो नहीं बनाया, प्रेजेंट तो नहीं बताया बनाया, अल्लाह तो वो है जिसने सब कुछ बनाया ना, तो इंसान से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब अल्लाह ताला ने फ्यूचर भी बनाया तो अल्लाह ताला के इल्म नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जब अल्लाह के इल्म है तो इसी को तो प्री डिटर्मिनेशन कहते हैं। कोई इंसान ने को थोड़ी प्री डिटर्मिनेशन करके बैठा हुआ है, राइट? कोई जिन को थोड़ी प्री डिटर्मिनेशन करके बैठा हुआ है, प्री डिटर्मिन करके बैठा हुआ है, कोई फरिश्ता को थोड़ी प्री डिटर्मिन करके बैठा हुआ है, ये तो उसने प्री डिटर्मिनेशन किया है जिसने बनाया है सब कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच,
फ्रॉम अदम मादूम से जो है वो उसको हर चीज को बनाया। तो एंड पॉइंट क्या है इसका कि वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला यहाँ पर जो अपने कलाम के अंदर इस तरह की बातें फरमाते हैं ना, ये अपनी कुव्वत का इजहार फरमाते हैं, ये अपनी ताकत का, अपनी अज़मत का इजहार फरमाते हैं। तो अहयैना हमने उसके जिंदा किया, ये हमारे लेकिन के लिए नहीं बयान फरमाते हैं कि हाँ जो करना है अल्लाह ने करना, मैंने क्या करना है, मैंने तो तफरीहात करनी है, मैंने तो शोहर मेले करने हैं, मैंने तो हरामखोरी करनी है और बाकी जो हिदायत है वो तो अल्लाह ने करनी है। इस हरामखोरी के लिए अल्लाह ताला ने अल्फाज अपने कुरान मजीद में नहीं फरमाए, बल्कि अपनी अजमत को पाव को बयान करने के लिए फरमाए हैं ताकि हमारी तवज्जो अल्लाह की अजमत की तरफ जाए, बजाय इसके कि शयातीन के निजाम की अजमत में जो हम फंसे हुए हैं वहां से निकल करके परवरदिगार की अजमत की तरफ हमारा फोकस बने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं सब खारिज मिन हय, अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता, इसको तो हम निकालेंगे। तो इसको उन चीजों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए जो कि इसको हिदायत का डिजर्विंग बनाए। इसको मेरे बाकी कुरान को भी पढ़ना चाहिए, बाकी कुरान को भी समझना चाहिए ताकि ये हिदायत का डिजर्विंग बने ना, वरना हम नहीं निकल। ये लास्ट वीक हमने इसी के ऊपर ही बात करी थी, तो उसमें हमने एक मिसाल जो है बयान करी थी कि हम बचपन में ना किसी कार्निवल, कराची में भी कार्निवल लगते थे, हमें डल्फिन बना देते कार्निवल का मेला कहते थे, पता नहीं क्या कहते थे उसको। तो उसके अंदर जो है ना वो एक मौत का कुआं होता था, मौत का कुआं, वो एक किस्म का बड़ा सा सिलेंडर होता था और उस सिलेंडर के अंदर झांकने के लिए आपको सीढ़ियों से पहले ऊपर जाना होता था, फिर ऊपर से आप झांकते थे तो नीचे नजर आता था। तो नीचे जो है ना वो एक गाड़ी खड़ी हुई होती, वो गाड़ी में बैठ करके जो एक स्टंटमैन होता था वो गाड़ी में बैठ कर उस गाड़ी को चलाना शुरू करता था उस सिलेंडर के अंदर। तो वो इतना तेज स्पीड देता था कि वो गाड़ी पहले तो ग्राउंड लेवल पे चल रही होती थी, फिर वो सिलेंडर की दीवारों पे चलना शुरू हो जाता, ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाता, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड इन सर्कल। तो यहां पर अल्लाह ताला एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं, लैसा बिखारिज मिन्हा, ही गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड हिज वे आउट, वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बाहर निकलने के लिए जो हमने उसको तरीका बताया था अपने नबी के वास्ते से, उधर वो सुनता ही नहीं है, उधर उसकी तवज्जो ही नहीं करने के लिए तैयार है, टाइम ही नहीं उसके पास है खाने पीने और शगल मेरे से, उसके पास टाइम नहीं बाकी बचता कि वो नबियों की बात जाकर के सुने, नबियों की वरासत की बात जाकर के सुने, उधर जाके कान लगाए कि हाँ भाई क्या कह रहे हैं ये, क्या समझा रहे हैं, इस घनचक्कर में से निकलने का रास्ता क्या है, असल में क्या तरीका है सुनने का। तो इस वजह से क्योंकि वो अपनी अकड़ में फंसा हुआ होता है, इस तरह से वो घूमता रहता है, सारी जिंदगी घूमता रहता है। 99 का चक्कर भी इसको कहते हैं, या आप जो है वो 9 to 5 जॉब और फिर उसके बाद 5 to 9 दूसरी जॉब। हजरत जी फरमाया करते थे हमारे हजरत के दिन भर जो है ये दुकान के अंदर और रात को दुकान इसके अंदर, दिन भर ये दुकान के अंदर और रात को दुकान इसके अंदर, यानी दुकान की वरी वो लेकर के अपने घर आता है, जॉब की वरी वो लेकर के अपने घर आता है, यूनिवर्सिटी की वरी वो लेकर के अपने घर आता है, ये वरीज उसका पीछा नहीं छोड़ रही, जान नहीं छोड़ रही। तो ये इसी तरीके से घूमता रहता है इस घनचक्कर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद, उसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल्काफ़िरीन मा कानू यअमलून, इसके बावजूद ही इज सो हैप्पी विद हिमसेल्फ। क्या जबरदस्त मेरी जिंदगी, कितनी अच्छी मेरी जिंदगी है, काम मैं कर रहा हूँ, इतना अच्छा कामयाबी सब कुछ। तो उसकी वजह क्या होती है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्योंकि उसके लिए जो उसके आमाल होते हैं ना, जो वो एक्शन कर रहा है ना, ये जैसे वो मौत के कुएं के अंदर वो साफ गाड़ी चलाने के लिए एक्सीलेटर के अंदर के ऊपर फुल जो है ना वो अपना पैर प्रेस किया हुआ है, जबरदस्त जो है उन्होंने ट्यूब भी डाला हुआ है अपनी गाड़ी के अंदर और खूब जो है वो जबरदस्त तरीके से विजिलेंट होकर वो अपनी गाड़ी को मैनूवर कर रहे हैं उस मौत के कुएं के अंदर, ये जो उसके अमाल है ना, बड़ा खुश हो रहा है, देखो मैं कितना जबरदस्त तरीके से जो है वो स्टंट प्रेजेंट कर रहा हूँ उनके सामने, क्या जबरदस्त स्टंट मैंने मारा हुआ है, क्या जबरदस्त मुझे गाड़ी के ऊपर ताकत हासिल है, कुवत हासिल है, कुदरत हासिल है, कितना जबरदस्त कंट्रोल हासिल है मेरे, मुझे इस गाड़ी के ऊपर खुश हो रहा है अपने आप से। और ऊपर से जो है ना वो लोग है वो उसके ऊपर कैसे भी निशावर कर रहे हैं, हमारे यहाँ से ना नोट निशावर करते हैं, वो कहते हैं ना उसके ऊपर नोटों में वायरस करते हैं, तो ऊपर से लोग उसके नोटों में वायरस कर रहे हैं, ये और खुश हो रहा है, उसकी तारीफें हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहा है, ठीक है। लेकिन हकीकत में इसको कुछ हासिल नहीं हो रहा, ये तो तमाशा कर रहे हैं ना खाली, ठीक है, अपने आप को भी खुश कर रहे हैं और लोग तो शैतान का काम कर रहे हैं, सिर्फ और तालियां पीट रहे हैं और उसको खुश कर रहे हैं और खुश हो रहा है। इसको कोई आईना दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ये आईने के सामने जाके खड़ा नहीं होना चाहता, जो उसको ये बताया कि यू आर वेस्टिंग योर लाइफ मैन, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू आर डूइंग विद योर लाइफ, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस दुनिया में इसलिए आए थे, तुम्हें अशरफुल मखलूकात तुम्हारे परवरदिगार ने इसलिए बनाया था कि तुम एक गाड़ी को बिठा करके जाए वो यूं करके घुमाते रहो और चंद रोड कमा लो, और एक दिन जो है या तो किसी एक्सीडेंट का शिकार होकर के तुम अगले जहान को सुधार जाओगे, या ये कि तुम्हारी नेचुरल लाइफ स्पैन जो है वो पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम अपने बिस्तर के ऊपर मर जाओगे, एंड दैट विल बी इट, दिस इज ऑल योर लाइफ गोल, क्या तुम इसलिए पैदा किए गए थे, इसलिए तुम्हें अल्लाह ताला ने अकल दी थी, जिस अकल की बुनियाद पर इंसान जो है वो अपने से इतने गुना ज्यादा बड़ी चीजों को मुसख्खर कर देता है, और इतने बड़े ताकतवर लोगों को जो है जानवरों को और मखलूकात को और पहाड़ों को उन सबको मुसख्खर कर लेता है, और इस अकल की बुनियाद पर इंसान जो है वो आसमानों में जो है वो उड़ना शुरू कर देता है और जमीन की सतहों तक पहुंच जाता है। ये अकल मैंने तुम्हें ये इसलिए दी गई थी तुम्हें कि तुम इस तरीके से जिंदगी गुजार दो और अपना मकसद जिंदगी जो है वो पहचानने की कोशिश ना करो, तो तुम्हें और हैवान में क्या फर्क हुआ फिर, वो भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जिंदगी गुजारता है, खाता है, पीता है, सोता है, उड़ता है और एक दिन मर जाता है, बस तो तुम्हारी भी जिंदगी का ये मकसद था। कि ये तो कौन बताएगा, ये तो आईना दिखाएगा ना, जो जो हकीकत उसको समझा रहा होगा उसके सामने ये आएगा बैठेगा अपने इख्तियार से, तब उसको ये बात समझ में आएगी। लेकिन ये अपने इख्तियार से किन लोगों के पास जाता है, जो इसकी बेवकूफियों के ऊपर और तालियां बजाते हैं और उसके ऊपर जो है ना वो नोट निछावर करते हैं और फूल निछावर करते हैं और उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, वो भी बेवकूफ और वो इसको मजीद बेवकूफी के अंदर चढ़ाने वाले लोग होते हैं। तो इस वजह से कजाने का जुयना लिल काफिरीना मा कानू यअमलून, ये काफिर है क्योंकि जो हकीकत नामा हमने भेजा था ये उसका इनकार कर रहा है, उसकी तरफ की तवज्जो नहीं है, उसको ये मानता नहीं है, उसका इनकार करता है, तो ये काफिर है और इसके आमाल जो है ना वो मुजयन बना करके इसके सामने शयातीन पेश करते रहते हैं, जैसे कि शयातीन का अल्लाह ताला कई जगहों पर नाम लेकर भी जिक्र फरमाते हैं, यहाँ पर तो शैतान का लफ्ज का जिक्र नहीं है, यहाँ पर तो मजहूल अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला सूरह अनकबूत के अंदर एक और जगह फरमाते हैं। ये जो वाकयात कुरान मजीद के अंदर है क्यों है, बात समझने के लिए ना, लेकिन अगर हम पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, कुरान से जुड़े ही नहीं और जुड़ करके समझने की कोशिश ना करें, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करके ना अपने थोप और सवाब जो है वो उनके अंदर इजाफे करते रहें, थोप और सवाब में इजाफे करते रहें, ईमान के बगैर कल बात हो रही थी बच्चों के साथ कि भाई आमाल से तो सवाब उस वक्त मिलता है जब नीचे ईमान की बेस हो, अगर आप इनकार कर रहे हैं कुरान मजीद की आयात का, अगर आप दीन इस्लाम की बुनियादों का इनकार कर रहे हैं तो फिर आपकी तिलावतों से क्या फायदा होगा, तिलावत करना तो आमाल है ना भाई, ठीक है। कोई काफिर आकर के नमाज पढ़ना शुरू कर दे, काफिर कौन होता है, पिछली दफा बात हुई थी, जॉर्ज काफिर होता है जी, चटनी काफिर होती है जी, और अब्दुल्ला जो है ना ये मुसलमान होता है, मोहम्मद मुसलमान होता है, तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई वो क्या था, वो भी तो अब्दुल्ला ही था ना, लेकिन मुनाफिकीन का सरदार था, और आज एक्स मुस्लिम के अंदर भी अब्दुल्ला एंड मोहम्मद एंड इकबाल एंड पता नहीं क्या क्या मुसलमान सारे के सारे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिम हैं, जबकि जॉर्ज मेरा दोस्त था बेंजामिन,
वो मुसलमान हो गया, नाम उसका बेंजामिन ही हमने कोई नहीं चेंज किया, तो बिन्यामीन बनता है उसका अरबी के अंदर, लेकिन वो मुसलमान था बेशक उसने नाम चेंज भी ना किया। तो काफिर तो इनकार करने वाले को कहते हैं ना, नाम से तो कोई काफिर के नाम से तो कोई मुसलमान नहीं होता, मुसलमान है लेकिन इनकार कर रहे थे वो तो मुसलमान नहीं है, और इकरार कर रहे हैं लेकिन नाम उसका जो है मुसलमानों वाला नहीं है वो मुसलमान है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फिर ये जो वाकयात बयान करते हैं तो हम इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वाकया बयान करके, वह इदा मदयन अखाहु शुएबा, और हमने मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, फकाल या कौमी उबुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, वर्जुल यौम अलआखिरा, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो, आखिरत के दिन की तरफ अपनी उम्मीदें लगाओ, इस दुनिया से उम्मीदें ना लगाना, आखिरत की तरफ उम्मीदें लगाओ। वला तअसु फिल अर्द मुफ्सिदीन, और इस जमीन के अंदर फसाद बर्पा ना करो। ये पैगाम थे जो कि नबी लेकर के आते थे, नबी ये नहीं लेकर के आते थे पैगाम कि खाने पकाने की फिक्र करो, देखो समवन इज एक्सप्लॉइटिंग यू, तुम्हारा खाना बंद किया हुआ है, तहरीक चलाओ ताकि तुम्हारी जो है ना वो एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाए। तो अब जो है ना लोग तहरीक चलाते हैं, तंजीमें बनाते हैं, हमारे कराची के अंदर हमने अपने बचपन के अंदर एक तंजीम देखी MQM के नाम, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। किस बुनियाद पर वो MQM बनी थी? क्योंकि हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, जो इंडिया से आए हैं हिजरत करके जो आए हैं ना उर्दू स्पीकिंग लोग, उनका इस्तेहसाल होता है, उनको प्रिविलेजेस नहीं दी जा रही होती, उनको जॉब नहीं मिल रही होती, उनको जो है वो गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन नहीं मिल रही होती, ये नहीं हो रहा था वो नहीं हो रहा होता। तो अब जो है ना वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, तो अब जो है वो सीधे मुंह बात नहीं मान रहे तो हम हथियार उठाएंगे, उन्होंने हथियार उठाए, पहले तो APMSO बनाई और पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्लाशनकोफ उठाई, पहली दफा जो है वो क्लाशनकोफ जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद उनके जो नौजवान बड़े होकर के बाहर आए तो फिर उन्होंने MQM बनाई, फिर MQM के बड़े जाने दी भी और जाने ली भी और सब कुछ किया उसके बाद। किस बुनियाद पर, किस वजह से किया उन्होंने सब कुछ? क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही, असल में मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी एक अलग कहानी है, असल में वाकई क्या नहीं मिल रही थी ये तो एक अलग कहानी है कि आप जब आए थे तो सारी गवर्नमेंट सर्विस तो आपके पास थी, सारे पढ़े लिखे तो आप थे, इंडिया से आए थे तो सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विस जॉब तो आपके पास थी। ये एकदम से एक जनरेशन में क्या हो गया कि आपके पास जो जॉब निकल कर या दूसरों के पास चली गई, वो एक अलग हकीकत है कि वाकई था भी कि नहीं था, लेकिन इट वॉज मेड टू बिलीव कि नहीं जी आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, आपकी जो डिजर्विंग राइट्स हैं आपके हक हैं वो आपसे छीन लिए गए हैं, दूसरों को दे दिए गए, अब आप खड़े हो जाए फाइट करें। तो इसके लिए एक तहरीक शुरू हुई और फिर लोगों ने जाने ली भी और जाने दी भी, वही तादाद में MQM, उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसी तरीके से दूसरे लोगों के ऊपर बड़े बड़े रेवोल्यूशन उठे टेंजिबल चीजों के लिए ना, जो फिजिकली परसीवेबल चीजें होती, खाना पीना जॉब कपड़ा लत्ता घर बार जमीन कारोबार, इसके लिए लोग रेवोल्यूशन उठाते हैं, इसके लिए लोग कुर्बानियां देते हैं, इसके लिए लोग जो है ना वो दूसरों को मारते भी हैं। लेकिन नबी जो पैगाम लेकर के आते हैं ना वो ये नहीं कि जी तुम अपनी जॉब के लिए उठो, तुम अपने मकान के लिए उठो, तुम अपने जो है वो खाने के लिए उठो, नहीं, ये पूरा का पूरा सिर्फ एक नजरियाती निजाम होता है, सिर्फ एक नजरिया कि इबादत जो है वो अल्लाह की करो। क्या मतलब कि मुतलकन जो अताअत है वो अल्लाह की करनी, इसमें ना खाने का जिक्र, ना पीने का जिक्र, ना जॉब का जिक्र, ना कपड़े का जिक्र, ना जमीन का जिक्र, ना मुल्क का जिक्र, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत के नाम पर और आखिरत की तरफ रुजू करने के। और ये सारी की सारी जो तहरीक उठी जिसके ऊपर शुरू में तो मुसलमानों ने जानी दी और बाद में मुसलमानों ने कुछ जानी ली भी, जब जिहाद का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर जानी ली भी, ये सब किस बुनियाद पर? ये सिर्फ एक नजरियाती बुनियाद, वरना तो कोई फर्क नहीं था। इन दे वर नॉट अंडर प्रिविलेज पीपल, जो मक्का मुकर्रमा में रहते थे या जो मदीना मुनव्वरा में रहते थे कि उनको जो है वो बागात नहीं दिए गए थे,
उनको जो है वो मदीना मुनव्वरा के कुएं के पानी का हिस्सा नहीं दिया गया था, उनको जो है वो जॉब नहीं दी गई थी, इस वजह से वो सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम के गिर्द इकट्ठे हो गए मक्का मुकर्रमा के अंदर और बाद में मदीना मुनव्वरा के अंदर, और उन्होंने अपने हुकूक की आवाज उठाई, इस तरह से एक तहरीक बन गई। कोई मसला नहीं था, सब कुछ सेट था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। तो ये तो एक अनदेखा अल्लाह, उसकी इबादत का मामला था, और वो भी खाली अकेले अकेले नहीं, छुप करके नहीं, बल्कि दूसरों को बुलाना, क्योंकि ये सारी मसले कब शुरू हुए थे, जब दूसरों को बुलाना शुरू किया था, छुप करके इबादत करते रहते अल्लाह ताला की, कोई मसला नहीं था किसी को, वर्ता बिन नौफिल भी करते थे कि नहीं करते थे, उन्होंने तो किसी बुत की पर पूजा नहीं करी, अबू बकर सिद्दीक पैदान करते थे नहीं अगर करते थे, उन्होंने तो किसी बुत की पूजा नहीं करी, किसी ने उनको तकलीफ दी, किसी ने उनको मारा, किसी ने उनको कुछ किया, वर्का बिन नौफिल, और इसके अलावा और भी थे दूसरे जो कि दीन तौहीद के ऊपर थे, किसी ने उनको कोई बॉदर नहीं किया। बॉदरेशन कब शुरू हुई, जब दूसरों को भी बुलाना और मना करना शुरू। तो ये तहरीक तो भाई ये तो नजरियाती चीज है, ये तो एक बिल्कुल, इसको हम कहते हैं ना कि भाई मसला क्या है, जॉब भी है, खाना भी है, मसला कोई नहीं है, खाना पीना सब कुछ, स्पेशली अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हो, पाकिस्तान में तो चलो खाने पीने के मसले कुछ लोगों को पड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो भी नहीं पड़ेगा, और यूरोप अमेरिका चले जाए और भी ज्यादा शुगल की जिंदगी। तो ये मसला क्या है, ये क्यों मौलवी साहब जो है वो परेशान करते रहते हैं खाम में आकर, और वो भी आप ज्यादा मौलवी तो परेशान भी नहीं करते, चंदे की हैं जो कि स्कूलिंग के वादे कर रहे होते हैं, ये ठीक नहीं है, ये सही दीन नहीं है, दाढ़ी उगा लिया और टोपी पहन लिया और पजामे उठा लिए और ये कर लिया, ये मुकम्मल दीन नहीं है, ये असल दीन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस अकवाम के जो वाकयात बयान फरमाए ना, उन्होंने फिर वही शुएब अलैहिस्सलाम उनके अपने भाई उनके अपने दरमियान में से उनको झुठलाया, और फिर सुबह के वक्त है ना वो उठे तो अपने घरों के अंदर वो मुर्दे पड़े हुए थे, उनके ऊपर अजाब आ चुका था, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वह आदम व समूद, और इसी तरीके से आद और समूद की जो कौमें थी उनका भी यही मामला हुआ, वक्त तबैयन लकुम मिन मसाकिनहिम, उनके भी जो रहने के घर है ना, जो आप जाते हैं यहाँ पे मदाइन साले, तो वहां पे उनके रहने के घर नजर आते हैं ना, तो उनके रहने के घरों से तुम्हें ये बात वाज़े हो जाती है कि उनके ऊपर देखो कैसे अजाब आया, वो ज़य्यन लहुम शैतान, कि उनके ऊपर अजाब आया, कि उनके साथ भी यही मामला था कि उनके भी आमाल को जो है ना वो शैतान ने मुज़य्यन बना दिया, दे वर वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट दे वर डूइंग एंड दे डिड नॉट बॉदर टू गो इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ए क्लीन मिरर, जो कि उनकी खराबियों को और उनकी अच्छाइयों को जैसी है वैसे करके उनके सामने रख सकते, छुपते रहते थे हर वक्त, अवॉइड करते थे हर वक्त, कि नहीं किसी कोई ऐसा ना मिल जाए कि जो कि ना हमारी इस्लाह कर ले, जो कि हमें बता दे कि ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, आप बयान में आ जाएंगे, मजलिस में आ जाएंगे, पता ना लगे कि असल में क्या हो रहा है, असल में क्या चल रहा है हमारे अंदर, तो ये भी ऐसे ही करते थे। तो फिर जब आईने के सामने नहीं जाएंगे तो शैतान ने फिर यही काम करना है, शैतान को अल्लाह ताला ने जॉब डिस्क्रिप्शन की जॉब लगा करके भेज दिए दुनिया के अंदर, रोटियां खाने के लिए कोई थोड़ी आए वो दुनिया के अंदर, तबियत करने के लिए कोई थोड़ी आए वो दुनिया के अंदर, आगे आगे आ जाएगी तो सबकी शौरों से जवाब देगी। तो ज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, यहां पर अल्लाह ताला ने एक्सप्लिसिटली शैतान का नाम लेकर के भी बयान किया कि वो ये काम करता है, फसद्दहुम अन सबीली, बस उसने उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि मामला क्या था, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकानु मुस्तबरीन, हालांकि ये लोग जो थे ये बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, ये बड़े बसीरत वाले लोग थे, बसीरत बल्कि बसारत वाले लोग थे, और उनको दुनियावी तौर से बड़ी बसीरत भी हासिल थी, यानी टेक्नोलॉजिकली दे वर वेरी एडवांस्ड, दे वर वेरी वेल रेड एंड वेल रिटन एंड वेरी इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, ऐसे कोई बेवकूफ किस्म के लोग नहीं थे, इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, बड़े बड़े निजाम बनाए थे, बड़ी बड़ी जो है वो नहरें बनाई थी, और यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जमाने के थे, ये लोग डिवेलप कंट्रीज थे, डिवेलप किस्म की नेशन, सोफिस्टिकेटेड किस्म के अंदर जो है वो पूरा निजाम होता था, लेकिन इन्होंने अपने आप को नबियों से दूर करके रखा, उनकी बात नहीं सुनी, तो बस ऑटोमेटिकली शैतान टुक ओवर और उसने जैर अलहम शैतान वाला काम किया। तो इस तरह से जो है ना वो इंसान अपनी जिंदगी को जाया करता है, और उसको जाया करने से खाली ये नहीं होता कि ओहो बाद में ख्याल आएगा कि हाँ यार जाया कर दिया, अच्छा होता कुछ कमा लेता तो फायदा हो जाता, बल्कि इससे होता ये है कि इसने दरअसल अल्लाह ताला की इस नेमत की जो कि हिदायत की नेमत है, आइनों की नेमत है, इस्लाह की नेमत है, हकीकत शनासी की नेमत है, इसकी इसने नाकदरी करी होती। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर नेमतें दे करके भेजा कि हम पहले से बहुत सारी नेमतें लेके इस दुनिया में आते, और फिर इस दुनिया में आकर के अल्लाह ताला मजीद हमें नेमतें देते रहते। कोई नेमतों का सिलसिला बंद तो नहीं हो रहा था, ऐसा तो नहीं होता कि हम खाने का जखीरा लेकर के आए थे अब मजीद कुछ नहीं मिला, बस किसी को भी तुमने अपनी सारी जिंदगी गुजारा करना, हमें रोजाना नया खाना मिल रहा होता है, रोजाना नई सस्टेंस मिल रही होती है, रोजाना नई जो है वो ऑक्सीजन मिल रही होती है, नई खुशियां मिल रही होती है, नए हालात अच्छे मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से इबादत या दुआ ये वन टाइम चीज नहीं है, ये तो वन टाइम उस वक्त होगी ना कि अगर आपको वन टाइम नेमत मिली होती, क्योंकि नेमत का सिलसिला नेवर एंडिंग है, तो इसी तरीके से इबादत का सिलसिला भी नेवर एंडिंग और दुआ का सिलसिला भी नेवर एंडिंग। तो अगर हम इन नेमतों की कदर नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला नेमतों को फिर हमसे छीन लेते, इसी नेमतों के छीन जाने को अजाब कहा जाता है। तो हमें अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना चाहिए, इन नेमतों की नाकदरी नहीं करनी चाहिए, इसी में हमारी खैर है। ये जो कुरान अजीम व शान है ये अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। या जिस मैं एक दोस्त से बात कर रहा था पिछले दिनों, उसको मैंने कहा कि देखिए हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, हमारे बड़े जो होते थे ना, वो बड़े कमाल वाले लोग होते, बड़ी जो है ना उनके अंदर सलाहियतें होती थी, बड़ा इल्म होता था, बड़ा फजल होता था, बड़ा उनके अंदर जो है मुजाहिदे होते थे, बड़ी कुर्बानियां देते थे, बड़ी जो है वो बसीरत होती थी, अकल होती थी, सब कुछ होता था उनके पास। अब हमारे अंदर जो है ना उनमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास अपने बड़ों की कुछ भी चीज हमारे अंदर मौजूद है, हम तो अपने आप को ऐसे ही समझते, तो हम किसी को क्या फायदा देंगे कि वो हमारे पास आकर के बैठे हैं तो हम जो है ना वो उनके पास तवज्जो हार डाल करके उनके दिल को जारी कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हमारे पास नहीं है। तो हमें जो है ना एक अकलमंदी का काम कर लेना चाहिए, बहुत आसान सा और अकलमंदी का काम, हमें अपनी मेहनतों को फोकस इस पे करना चाहिए कि अल्लाह के बंदे जो है ना वो किसी तरीके से अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए, कुरान अजीम शान से जुड़ जाए। वो कुरान अजीम शान से जुड़ने का मतलब क्या, अब वही बात है कि जुड़ने की बात करो तो फिर वो चले जाते हैं करने के लिए, जो कि मेरे अपने बच्चे भी कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा कि बच्चों को हिफ्ज़ ना करवाएं, या अगर आप बड़े हो गए और आपके पास जो है वो ऐसी फैसिलिटीज मौजूद है, वक्त मौजूद है, सलाहियतें मौजूद है, तो आप भी हिफ्ज़ करें, कि इसको डिस्करेज हरगिज़ नहीं कर रहे, लेकिन मुसीबत का फैस बहरहाल जिक्र तो करना पड़ेगा ना कि जुड़ने की बात करो तो उनको हिफ्ज़ ही समझ में आता और कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से ये बात करते। तो कुरान से जुड़ने का मतलब कुरान अजीम शान को सीखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, अहमियत देना शुरू करें। ठीक है, देखें हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस किस्म के बंदा हूं, तो इस वजह से जब तक कंप्यूटर साइंस के साथ लगा हुआ था तो कुछ चीजें सीखी हुई थी, अब तो पता नहीं दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, इधर हमें पता भी नहीं क्या चल रहा है सुपर मार्केट के। लेकिन खुद को देखा था कि जी कुछ होते थे ना पहले जमाने में वो डम टर्मिनल जो होते थे और एक जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, वही काम करना चाहिए, और तो अल्लाह को इज्जत ना दे करके क्या बनेगा हमारा? जो बन रहा है वही बनेगा। जलील और रुसवा सारी दुनिया के अंदर हर लिहाज, घर में भी और बाहर भी, और झूठ का फरेब और पलम पलंदा जो है वो उसको जो है वो इज्जत समझ करके बैठे हुए। तो अल्लाह के कलाम को इज्जत देना, ये हम सीख, ये हम करना शुरू कर देना, बस हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें पकड़ करके हमारे कश्ती को पार लगाना, हमें आमाल भी करवाने की मेहनत देनी है, सलाहियत भी देनी है, इल्म भी देना है, वसाइल भी देने हैं, जिस चीज की जरूरत होगी अल्लाह ताला दे। और अल्लाह ताला ईमान को देखता है, यानी कि डू वी ट्रस्ट हिज कलिमात और नॉट। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कलिमात के साथ, अपने कुरान के साथ सही मानों में जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी इस डूबती हुई कश्ती को किनारे तक लाने में हमारी मदद फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। وشرقه من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو في أسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. दुआ कर लेते हैं, जिनको वुजू बनाना है तो वो वुजू तो कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह।